ओम शांति। बीस फरवरी 2001। अभी फॉरेन का कुमार ग्रुप, बहुत अच्छी भट्टी की, बहुत अच्छा लगा। कुमार कमाल करेंगे, कुमार जो चाहे वह कर सकते हैं, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, करना है ना। होशियार है सब, बाप दादा चेहरों से ही देख रहे हैं कि सभी हिम्मत वाले हैं। हिम्मत की मुबारक हो, बहुत अच्छा। बाप दादा ने देख लिया ना, अभी तो कंप्लेन नहीं होगी ना कि हमको कोई ने देखा नहीं। एक एक को देख लिया, अच्छी मेहनत की है। 20 फरवरी 2001, फॉरेन का कुमार ग्रुप, बहुत अच्छी भट्टी की, बहुत अच्छा लगा। कुमार कमाल करेंगे, कुमार जो चाहे वह कर सकते हैं, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, करना है ना। कुमार जो चाहे वह कर सकते हैं, कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, करना है ना।
पर काली भरी है,
होशियार है सब, बाप दादा चेहरों से ही देख रहे हैं कि सभी हिम्मत वाले हैं। हिम्मत की मुबारक हो, बहुत अच्छा। बाप दादा ने देख लिया ना, अभी तो कंप्लेंट नहीं होगी ना कि हमको कोई ने देखा नहीं। एक एक को देख लिया, अच्छी मेहनत की है। क्या देखा? चेहरे पर हिम्मत, और क्या देखा? बाबा ने एक एक को देख लिया है। क्या क्या देख लिया?
मेहनत कर रहे हैं सेवाओं में,
मेहनत अच्छी कर रहे हैं सेवाओं में, ये देख लिया। और क्या देखा? कुमारों को देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? जो चाहे कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तुम्हारे भगवान के नाम से ही क्या हो जाता है, उधर असंभव संभव, ना उम्मीदवार कार्य उम्मीदवार कार्य बन जाता है, होपलेस होपफुल बन जाता है। तो यहाँ तो तुम्हारा साथी स्वयं भगवान है, इसके लिए हर असंभव कार्य को संभव कर सकते हो, जो चाहे वह कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम नहीं कर सकते, इतनी शक्ति है। एक एक को देख लिया, तो बाबा एक एक को देख रहा है, कितने बड़े बड़े त्याग किए हैं, एक एक के निश्चय को देख रहा है, एक एक की पवित्रता को देख रहा है, एक एक के जीवन को देख रहा है, दिव्य गुणों की सुगंध को देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है। अच्छी मेहनत की ना, अब तो कंप्लेंट नहीं होगी ना कि हमको कोई ने देखा नहीं। चाहना है कि कोई देखे, और कौन देखे? स्वयं भगवान देख ले, इससे बड़ा और क्या है। तो ये कंप्लेन पूरी हुई, कंप्लेन कंप्लीट हुई। कौन सी? कि हमको कोई ने देखा नहीं। एक एक को देख लिया, भगवान सब कुछ देखता है, ऐसा कुछ भी नहीं जो उसे पता नहीं। एक तरफ तो बाबा कहते हैं कि मैं जानी जाननहार नहीं हूं, किसके मन में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, तुम बताओ तो मुझे पता चले। दूसरी तरफ साकार मूर्तियों में आता है, मैं निराकार सब कुछ जानता हूं, भी नहीं जो बाप नहीं जानते। किसी की भी स्थिति को देखकर ये बता सकते हैं कि क्या पद मिलने वाला है, ये भी बाबा कहते हैं। तो वो सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ जानता है। ऐसा कुछ भी नहीं जो वो नहीं देख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं जो वो नहीं सुन रहा है। हर एक चीज वो देखता है, वो सुनता है, वो समझता है। इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि ये संकल्प जो मन में आया किसी ने नहीं देखा। हर संकल्प की आवाज वो सुनता है, हर संकल्प की पदचाप उसे सुनाई देती है। यहाँ भगवान के देखने की बात चल रही है। भगवान सब कुछ देख रहा है, निरंतर ये संकल्प रखे कि हमें वो देख रहा है। गॉड इज सीइंग यू, वो हमें देख रहा है। कहीं पर भी हम अकेले नहीं है, एकांत में नहीं है। उसकी आंखें हमें देख रही है, उसके कान
नींद नहीं आती
हमें सुन रहे हैं। वो अंतर्यामी नहीं है परंतु अंतर्यामी है। वो सब कुछ जानता नहीं है पर सब कुछ जानता है। ऐसा कुछ भी नहीं कि वो नहीं जानता, ऐसा कुछ भी नहीं कि वो नहीं देखता सुनता। सब कुछ वो जानता है। के लिए अभी तो कंप्लेंट नहीं होगी ना कि हमको कोई ने देखा नहीं, एक एक को देख लिया। परंतु उसकी दृष्टि जो है वो साक्षी है, वो कहीं पर भी हस्तक्षेप नहीं करता है, कहीं पर भी इंटरफियर नहीं करता है। जो हो रहा है उसे होने देता है, उसे पलटा है। ये जो हो रहा है सब खेल है, धूप छाया का खेल चल रहा है यहाँ, धूप छाया का खेल। इसके लिए वो कहीं पर भी इंटरफियर नहीं करता। खेल ही उसने ऐसा रचा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तस फल चाखा। उसमें कहीं पर भी इंटरफियर नहीं करता है। यहाँ जो होता है उसको स्वतः ही उसके कर्म अनुसार फल मिलता है। यदि वो इंटरफियर करने लगे, हाँ यदि वो भी प्रभावित होने लगे, तो फिर उसकी स्थिति भी डगमग हो जाएगी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक महान विचारक, शिक्षणविद, बंगाल की भूमि पर हुआ है। उसके जीवन में दिखाया है कि कभी वो एक नाटक देख रहा है और उस नाटक में एक पात्र किसी स्त्री के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है। और वो जब नाटक चल रहा था तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो कि बहुत ही ज्ञानी, कल्चर्ड, सुसंस्कृत व्यक्ति है, उससे भी रहा नहीं गया। वो भी ये भूल गया कि ये नाटक है। उसे तो खास बुलाया गया था उस नाटक देखने के लिए। वो इतना गुस्सा हो गया, कि अपनी चप्पल निकाली और सीधा उस कलाकार को मारने के लिए दौड़े। और वो कलाकार खड़ा हो गया और उसने हाथ जोड़कर नमस्ते किया, वंदन किया और कहा कि आज मैं धन्य हो गया, मेरी कला का ऐसा पारितोषिक मुझे आज तक नहीं मिला। और उसने वो चप्पल ले ली और कहा कि मैं इसे सर पर रखता हूं और अभी वापस नहीं दूंगा। आज तक मैंने बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं, परंतु ऐसा पुरस्कार कभी आज पहली बार जीता है। इसका मतलब मैं सर्वोत्तम कलाकार हूं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसा परम ज्ञानी पुरुष भी ये भूल गया कि ये केवल एक नाटक था। भगवान भी यदि भूल जाए तो वो भी बार बार दौड़ कर आएगा वहां से, परम धाम से, ये क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो देखता है, परंतु उसके देखने में संपूर्ण साक्षी भाव है। विद्यासागर चप्पल विद्यासागर चप्पल तो वो कलाकार कहता है कि जीवन भर इस चप्पल को अपने पास रखूंगा, कभी नहीं दूंगा, ये मुझे याद दिलाएगी कि आप भी भ्रमित हो गए नाटक को देखकर, मेरी कला को देखकर। उसी तरह जब इंग्लैंड में सबसे पहली बार 3D मूवीज आई थी, थ्री डायमेंशनल मूवीज, फर्स्ट 3D मूवी जब इंग्लैंड के सिनेमा गृह में दिखाई गई, 3D में ऐसा लगता है जैसे वो आदमी जो आ रहा है सीधा हमारे ऊपर आ रहा है। वो स्पेशल गॉगल, स्पेशल चश्मा पहनकर वो मूवी देखी जाती है 3D। आपने भी देखी थी तो स्पेशल 3D मूवी वो देखने के लिए स्पेशल चश्मा होता है। पहली बार इंग्लैंड में जब वो मूवी दिखाई जा रही थी फर्स्ट टाइम, सारा ऑडियंस बैठा हुआ है, सामने से एक व्यक्ति आ रहा है घोड़सवार, अपने हाथ में भाला लिए हुए, तेजी से घोड़े पर सवारी करते हुए आता है अश्वारोहक, और जोर से भाला फेंकता है तो आधी सभा इस ओर झुकती है और आधी सभा इस ओर झुकती है, जबकि हो रहा है केवल खेल। झूठ का सच हो जाना, झूठ का सच प्रतीत होना, इसी को माया कहा जाता है। मायापति जो है वो इस माया के प्रभाव में कभी नहीं आता है, उसे ये माया भ्रमित नहीं कर सकती।
माया 3D है।
ये संसार का जो खेल चल रहा है ये भी एक मायावी खेल है, भगवान इससे प्रभावित नहीं होता है, वो अपनी साक्षी अवस्था में निरंतर रहता है, उसे यहां से कोई लेना देना नहीं है। बाबा आते हैं, मुरली चलती है और ऐसे निकल जाता है जैसे कोई करना नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए कठपुतलियों का खेल है, ये शरीर उसके लिए कठपुतली है, कोई मर रहा है कोई जी रहा है। क्या वो दुखी होता है किसी के जाने से? लाखों जी रहे लाखों मर रहे, कोई भी हो फिर हो, उसके लिए तो मिट्टी के पुतले मात्र है, वो प्रभावित नहीं होता है, इसके लिए ही वो अचल रहता है। कोई बहुत उसकी प्रशंसा कर रहा है तो कोई उसकी निंदा भी कर रहा है, उसे निंदा और प्रशंसा प्रभावित नहीं करते। निंदा से दुखी होने का कारण है प्रशंसा की अभी प्रशंसा की एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा। अगर प्रशंसा की अपेक्षा से मुक्त हो गया आदमी तो निंदा से प्रभावित हो जाएगा। निंदा के प्रभाव से मुक्त होने की विधि है प्रशंसा के की अपेक्षा से मुक्ति, ऐसा ये सूक्ष्म सूत्र है। जिसने प्रशंसा की अपेक्षा ही बंद कर दी, वह स्वतः ही निंदा के प्रभाव से भी मुक्त हो जाता है। निंदा के प्रभाव से मुक्त होने की विधि है सभी प्रशंसा की अपेक्षा से मुक्त हो जाना। कार्य करे परंतु उन्हें निष्काम करते जाओ, सेवाएं करते जाओ और निष्काम होते जाओ। प्रशंसा के शिखर पर व्यक्ति पहुंचता है परंतु फिर भी अप्रभावित अगर है तो वो बहुत ऊंची अवस्था है, बहुत ऊंची अवस्था। एक उदाहरण यज्ञ का आज जो है वो है शिवानी बहन का। प्रशंसा से अप्रभावित है, इसके लिए अगर निंदा भी अगर हुई तो उससे भी अप्रभावित रहेगी आत्मा। प्रशंसा की कोई कामना नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, इसके लिए उसका कोई असर भी नहीं है। वो निमित्त भाव अपनी चरम अवस्था पर है, इंस्ट्रूमेंट, बीइंग एन इंस्ट्रूमेंट। ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो विचारधारा है, ये जो धारणा है अवचेतन में चली गई है, इसके लिए अप्रभावित। एक एक को देख लिया, बाबा कह रहे हैं, बाबा ने सबको देख लिया, साक्षी होकर देखा। उसका देखना परम साक्षी भाव है, और वो यदि हमारा भी देखना ऐसा हो जाए जिसमें परम साक्षी भाव है, तो यहां पर जो कुछ हो रहा है हम अप्रभावित रहेंगे। निंदा, स्तुति, जय, पराजय, हानि, लाभ, ये स्थित प्रज्ञ योगी के लक्षण है। योगी अर्थात ही वो जो सुख दुख से अप्रभावित है। बहुत सुख तो बहुत सुखी हो जाना, बहुत दुख तो बहुत दुखी हो जाना, ये योगी के लक्षण नहीं है। बहुत प्रशंसा तो बहुत खुश, थोड़ी सी निंदा तो दुख। दो शब्द, दो दरवाजे, दो रास्ते असफलता के, कौन से? अभिमान और अपमान। यदि ये चला जाए तो सेवाएं सफल हो जाएगी। केवल सेवा नहीं करनी है, रूहानी सेवा, केवल खिदमत नहीं, खुदाई। खुदाई शब्द उसमें अटैच हो, ये नाम भी यदि याद आया तो खुदाई जादू समा जाएगी, स्पिरिचुअल मैजिक। सेवाओं में स्पिरिचुअल मैजिक हो जाएगा यदि केवल नाम भी याद रहे। सेवाएं तो संसार की सारी आत्माएं कर रही है, कौन सेवा नहीं करता है? समाज सुधारक, समाज सेवी, सोशल रिफॉर्मर्स, वो भी सेवाएं करते हैं, परंतु वो केवल जिस्मानी सेवा है। स्वयं को देखना है, हम जो सेवा कर रहे हैं वो केवल जिस्मानी है? रूहानियत, सेवाओं में रूहानियत आ जाए वो उसे ही सेवा कहा जाएगा, नहीं तो नहीं। तो बहुत अच्छी भट्टी की, बहुत अच्छा लगा। कुमार कमाल करेंगे, कुमार जो चाहे वह कर सकते हैं, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, करना है ना। होशियार है सब, बाप दादा चेहरों से ही देख रहे हैं कि सभी हिम्मत वाले हैं। हिम्मत की मुबारक हो, बहुत अच्छा। बाप दादा ने देख लिया ना, अभी तो कंप्लेंट नहीं होगी ना कि हमको कोई ने देखा नहीं, परंतु ये भाव भी हमारे अंदर ना हो कि हमको कोई देखे। चाहे अमृत वेला हम कर रहे हैं, तो ये भी ना हो कि हमको कोई देखे। हम ज्ञान का मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कोई भी हमें देखे, ये भाव अगर है तो सेवाओं की मार्क्स कम हो जाएगी। जितना सब कुछ गुप्त है उतना वो शक्तिशाली है, जितना जो छोटा है क्वांटिटी वो उतना शक्तिशाली है, पावरफुल। जितना जो निर्वाण स्थिति में है, जो शब्द निकलेंगे कम है, यथार्थ है, शक्तिशाली है। एक शब्द में हजारों शब्दों का रास समाया हुआ है, विस्तार नहीं होगा। गुप्त, जितना जो त्याग गुप्त है उतना उसमें शक्ति अधिक मिलेगी। जितना जिस त्याग का दिखावा है, बाहर प्रशंसा जरूर होगी परंतु अंदर शक्ति नहीं भरेगी। दिमाग तेज और दिल खाली। हाँ, हाजी बाबा ने, मोहम्मद हाजी। जहां त्याग का दिखावा होगा, हमने त्याग किया परंतु इच्छा है कि दूसरे देखे, वहां मार्क्स कम होती है। हमने सेवाएं की परंतु इच्छा है कि किसी को पता चले, मार्क्स कम होगी। हमने तपस्या की, तप का अर्थ ही एक है, तप अर्थात मैं को मिटाना, और कोई तपस्या है ही नहीं, यही तपस्या है। मैं को मिटाने की साधना, मैं को समाप्त करने को ही तप कहा जाता है। उसी तप का अभिमान, उसी तप का दिखावा, हम तप कर रहे हैं। ऋषि मुनि कहाँ जाके तप करते थे? ऐसे निर्जन स्थान पर, कोई गृहस्थी वहां ना आए, किसी को पता तक ना चले कि हम तप कर रहे हैं। ऐसे आश्रम में जो कि गांव से बहुत दूर किसी वन में, वहां तपस्या करते थे, मौन, चुपचाप, आवाज नहीं। ऐसी स्थिति में जो तपस्या की जाती है वही परम बल बनता है। जहां दिखावा है, जहां शोरगुल है, जहां आवाज है, वो जो तपस्या है उससे बल नहीं पड़ता। तो अपनी सेवाओं को, अपनी तपस्या को, अपने त्याग को, अपने संकल्पों को, अपने अनुभवों को भी गुप्त करते जाओ। महान अनुभव जो होते हैं अध्यात्म में, उनको सुनाने से शक्ति कम हो जाती है। सेवाओं के लिए सुनाना वो एक अलग टॉपिक है, परंतु जितने जो गुह्य अनुभव होंगे, डीप प्रोफाउंड एक्सपीरियंसेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी होंगे, वो सारे ही गुप्त रखे जाए। जितने वो गुप्त होंगे उतना ही अनुभव श्रेष्ठ होगा। अपनी सेवाओं को, अपने त्याग को, अपनी तपस्या को, अपने अनुभवों को क्या करते जाओ? गुप्त करते जाओ, तो अंदर शक्ति बढ़ती जाएगी। अगली मुरली है 3/2/2002, 3 फरवरी 2002। आज युद्ध ग्रुप आया है, युद्ध बहुत है। बाप दादा युद्ध ग्रुप को वरदान देते हैं कि सदा सदा युद्ध रहो, युवा धन है राष्ट्र का, युवा धन। सदा आबाद रहना, एक भी खजाना बर्बाद नहीं करना, आबाद रहना, आबाद करना। लौकिक गुरु लोग आशीर्वाद देते हैं, क्या आशीर्वाद देते हैं लौकिक गुरु? क्या आशीर्वाद देते हैं? चिरंजीवी भव, दीर्घायु भव, आयुष्मान भव और धनवान भव, पुत्रवान भव, यशस्वी भव, सौभाग्यवती भव, अष्टपुत्रवती भव, खुशहाल भव। बाबा कह रहे लौकिक गुरु लोग आशीर्वाद देते आयुष्मान भव, और बाप दादा कहते हैं शरीर की आयु तो जितनी है उतनी रहेगी, इसलिए शरीर की आयु के हिसाब से आयुष्मान भव का वरदान नहीं देते, लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में सदा आयुष्मान भव। क्यों? ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, तो आयुष्मान तो होंगे ना। युद्ध की एक विशेषता होती है, आप युद्ध अपनी विशेषता को जानते हो? क्या विशेषता होती है जानते हो? क्या विशेषता है आप में? किसने कहा जो चाहे वह कर सकते? अच्छा, कर सकते हो,
खुद ही तो बोला।
अच्छी बात है। दुनिया के हिसाब से कहते हैं युद्ध जिद्दी बहुत होते हैं, जो सोचेंगे वह करके दिखाएंगे, वह लोग उल्टा कहते हैं। लेकिन यहाँ ब्राह्मण युद्ध जिद्दी नहीं, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा पर पक्के रहने वाले, हटने वाले नहीं, ऐसे ही हो युद्ध महाजिद्दी। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, बाप दादा खुश है हाथ उठाना, यह भी हिम्मत है। लेकिन रोज अमृत वेले बाप से की हुई प्रतिज्ञा की हम इस ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति से, सेवा से कभी भी संकल्प में भी हटेंगे नहीं, इस हिम्मत को, प्रतिज्ञा को रोज दोहराओ और बार बार चेक करो कि हिम्मत जो रखी, संकल्प किया, वो प्रैक्टिकल में हो रहा है। तो दो बातें यहाँ कही है बाबा ने, सबसे पहली बात तो वरदान और दूसरी बात विशेषता। तो आज युद्ध ग्रुप आया है, युद्ध बहुत है, बाप दादा युद्ध ग्रुप को वरदान देते हैं कि सदा आबाद रहना, आबाद करना, आबाद रहना और आबाद करना। आबाद अर्थात आबादी, पॉपुलेशन, आबाद टू पॉपुलेट, संपन्न, भरपूर, खुशहाल, ये सारे शाब्दिक अर्थ तो नहीं, परंतु इस तरह के अर्थ लिए जा सकते हैं। आबाद रहना, भरपूर रहना, संपन्न रहना, बर्बादी से परे रहना, एक भी खजाना बर्बाद नहीं करना। कितनी अच्छी बात है, कोई भी खजाना बर्बाद नहीं करना। और सबसे महत्वपूर्ण खजाना, खजाने दो है, संकल्प और समय। अपने संकल्पों को वेस्ट नहीं करना और समय को। समय थोड़ा स्थूल है, संकल्प बहुत सूक्ष्म है, पर अगर देखा जाए तो ये दो खजाने कभी भी वेस्ट नहीं करने। हमारा जो समय है सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे समय की कीमत का हिसाब नहीं लगाया जा सकता है, अगणित है। इतना महत्वपूर्ण है हमारा समय, वर्णन नहीं कर सकते, अगणित, गीतातीत। एक भी खजाना अशोक भाई बर्बाद नहीं होना चाहिए, है ना? सबसे बड़ा खजाना है समय, तो समय हमारा वेस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? एक भी सेकंड, एक भी मिनट वेस्ट नहीं होना चाहिए, सारा ही समय कहीं ना कहीं ज्ञान और योग में लगना चाहिए। साधारण से कर्मों को योगों में परिवर्तन कर दो, छोटे छोटे कर्म, सभी कर्मों को। ऐसा ना हो कि ये अभी पूरा हुआ आप चलो योग करने, ये नहीं, ये पूरा हुआ अब योग करेंगे, ऐसा नहीं। वो भी योगी हो जिसे पूरा किया, अर्थात जो अब तक कर रहे थे वो योग नहीं था, इसका अर्थ है। इसका अर्थ है अब भी योग करेंगे, अब योग का टाइम है, अब योग का, अब योग करने जाना है,
विशेष है ना,
विशेष दूसरा, परंतु ये कहना अब योग करने जाना है, हो जाओ, परंतु सारा ही योगी योग हो, कर्म और योग, याद और सेवा, खुदा और खिदमत, सर्विस और गॉडली, ईश्वरीय और सेवाधारी, ये अलग ना हो, कंबाइंड हो, इसमें बैलेंस हो तो ब्लिसफुल स्थिति होगी, और ब्लिसफुल स्थिति होगी तो कृपालु ब्लिसफुल बन सकेंगे। किस पर कृपा करूं ये प्रश्न ही नहीं उठेगा। बहुत ज्यादा सहज मेहनत बाप दादा सहन नहीं कर सकते हैं। कार्य सफल हुए ही पड़े हैं, खुदाई खिदमतगार का कोई भी कार्य असफल हो ये हो नहीं सकता, एक भी खजाना बर्बाद नहीं करना, कहां कहां टाइम वेस्ट जाता है। पहले तो ये देखो, बातचीत, घूमना फिरना, भोजन, कहां कहां टाइम वेस्ट होता है। एक भी खजाना बर्बाद नहीं करना, आबाद रहना, आबाद करना। लौकिक गुरु लोग आशीर्वाद देते आयुष्मान भव, और बाप दादा कहते हैं शरीर की आयु तो जितनी ही उतनी रहेगी, लेकिन इसलिए शरीर की आयु के हिसाब से आयुष्मान भव का वरदान नहीं देते, लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में, इस ब्राह्मण जीवन में मरना अर्थात ज्ञान छोड़ देना केवल मरना नहीं है, पुरुषार्थ छोड़ देना भी मरना ही है, अमृत वेला छोड़ देना अर्थात ब्राह्मण जीवन से मरना, मुरली का अध्ययन छोड़ देना, चिंतन छोड़ देना, मनन छोड़ देना अर्थात ब्राह्मण जीवन में मरना, इस ब्राह्मण परिवार से दूर हो जाना अर्थात ब्राह्मण जीवन में मरना, तीव्र पुरुषार्थ संगठन से हट जाना अर्थात मरना। क्या कहा? गाय का अगर मुख ना चले तो गाय अनहेल्दी है, कल की मुरली का अंतिम वाक्य, अच्छा से पहले विचार सागर मंथन कहो, उगारना कहो, रवन करना, चीव द कड, क्यूमिन टू चीव द कड इंग्लिश में कहा जाता है, रूमिनेट, रूमिनेशन इंग्लिश में शब्द है, रूमिनेशन, चीव द कड, उगारना नहीं करते हैं तो क्या है, वो भी मरना ही है इस ब्राह्मण जीवन में। खा तो रहा है परंतु हजम नहीं करना अर्थात मरना ही है। तो मरना केवल ज्ञान छोड़ देना नहीं, बहुत सारी चीजें उसमें, सेवा में उमंग उत्साह कम हो जाना अर्थात मरना। दिवाली थी नहीं, दिवाली है, मनाना अब है, नया उत्साह, नया उमंग, नया उत्सव, ये है मनाना। चार बातों में से पहली बात, पिछले संडे के, पिछले संडे मनाना, मिठाई खाना और खिलाना, अपने मीठे बोल से, बाप की स्मृति से दूसरों को बाप के संबंध में लाना अर्थात मिठाई खिलाना, बधाई देना, ये सारी चीजें किस में आती है, मिल मनाने में। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात मनाना, नहीं मना रहे हैं Brahmin life is all about celebration. अगर celebrate नहीं कर रहे, festival नहीं है अगर जीवन में, enthusiasm नहीं है, वो zeal, वो zest, वो उमंग, वो उत्सव, वो उत्साह, वो उल्लास, वो हुल्लास नहीं है, अर्थात dead life. पूछो, dead life है या life of celebration है? आयुष्यवान भव का अर्थ केवल उनके लिए, बाबा कह रहे ये सोचकर खुश मत हो जाओ कि जो ज्ञान छोड़कर गए और हम तो नहीं गए. ब्राह्मण लाइफ इज ऑल अबाउट सेलिब्रेशन. ब्राह्मण जीवन जो है उत्सव का जीवन है, मृत जीवन नहीं है, अमर्त जीवन है. मर्त जीवन नहीं है, मृत्य नहीं है, अमर्त्य है, अमृत का जीवन है, मरा हुआ नहीं. तो एक वरदान. दूसरी विशेषता, आप युद्ध अपनी विशेषता को जानते हो? क्या विशेषता होती है जानते हो? क्या विशेषता है आप में? क्या विशेषता है? किसी ने कहा डर डर के जो चाहे वह कर सकते. अच्छा, कर सकते हो. देखो अगर ऐसा हो तो कैसे होगा. अच्छा, कर सकते हो तो और ही थोड़ा पीछे हटेगा. अच्छी बात है. दुनिया के हिसाब से कहते हैं युद्ध जिद्दी बहुत होते हैं, जो सोचेंगे वह कर दिखाएंगे. वह लोग उल्टा कहते हैं, लेकिन यहां युद्ध, ब्राह्मण युद्ध, ब्राह्मण युद्ध जिद्दी नहीं, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा पर पक्के रहने वाले, हटने वाले नहीं, भीष्म प्रतिज्ञा करने वाले हैं. ऐसे वो युद्ध, हाथ उठाना तो बहुत सहज, बाप दादा खुश है हाथ उठाए, यह भी हिम्मत है न, लेकिन रोज अमृत वेले बाप से की हुई प्रतिज्ञा की इस ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति से, सेवा से कभी भी संकल्प में भी नहीं हटेंगे. इस हिम्मत को, प्रतिज्ञा को रोज दोहराओ. प्रतिज्ञा करना और फिर उसे दोहराना, वो बहुत आवश्यक है, रेपिटेशन. और बार बार चेक करो कि हिम्मत जो रखी, संकल्प किया, वो प्रैक्टिकल में हो रहा है. प्रतिज्ञा करना और फिर दोहराना, प्रतिज्ञा करना, बार बार रिपीट करना, स्वयं को स्वयं याद दिलाना कि ये प्रतिज्ञा हमने की, चाहे कुछ भी हो जाए, सेवा से हटेंगे नहीं, संकल्प से हटेंगे नहीं. महान आत्माएं एक ही बार प्रतिज्ञा करती है, बार बार नहीं. महान आत्माएं एक ही बार किसी चीज का त्याग करती है. एक बार त्याग कर दिया फिर पीछे मुड़ के नहीं देखती. वो भीष्म ने छोटी छोटी रिहर्सल की थी, एक ही प्रतिज्ञा की, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गंगा पुत्र भीष्म आज से ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जीवन भर अविवाहित ही रहूंगा. सुनी ना वो प्रतिज्ञा उसकी, ऐसी प्रतिज्ञा करनी है. धीरज भाई, आंधी तूफान चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा फायदा भी हो जाएगा, हमको लगेगा कि हाँ, जब ज्यादा आंधी तूफान है तब जाके प्रतिज्ञा करना, हाथ ऊपर करके, तो थोड़ा बल भी मिलेगा. ठीक है ना राम भाई? आंधी तूफान में खड़े रहकर प्रतिज्ञा करना है, जब कोई नहीं देख रहा हो तब, तो लगेगा कि वो भीष्म प्रतिज्ञा है. भीष्म को अगर वो प्रतिज्ञा तोड़ देता तो शायद उसकी मृत्यु वैसी ना होती जैसी हुई है. अंबा, अंबिका, अंबालिका, वो तीन दिखाई है ना रानियां, उसमें जो अंबिका होती है, अंबा, अंबिका, अंबालिका, अंबा जो होती है वही तो आकर फिर श्रीखंडी बनती है. कई जन्मों के बाद पहले नदी बनती है और फिर श्रीखंडी बनती है, कुछ भी हो सकता है वहां. तो वही तो प्रतिज्ञा करती है, मुझसे शादी करो. वो कहता है मैं नहीं कर सकता. तो वो कहता है तुम्हारे मृत्यु का कारण मैं बनूंगी, तुमने मेरा अपमान किया है. क्योंकि वो तीनों ही रानियों को लेके आता है ना, कन्याओं को. वो तो कहानी है, आपको उस कहानी को समझना पड़ेगा. उस जो चित्रव्रत, क्या नाम है, चित्रसेन, विचित्र वीर्य, विचित्र वीर्य की जब शादी करनी होती है तो वो उनको आमंत्रण नहीं दिया जाता। एक जो नरेश होता है उधर का, उसकी ये तीन बेटियां होती है, तो भीष्म इसकी ओर से जाता है और उन तीनों रानियों को पकड़ के लेके आ जाता, तीन कन्याओं को लेके आ जाता है स्वयंवर से सारे राजाओं को हरा के। और ये तीन रानियों में से एक रानी कहती है कि मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ, शल्य राजा से। तो वो कहता है मैं तुम्हें वापस छोड़ के आता हूँ। तो वापस छोड़ने जाता है तो राजा उसे स्वीकार नहीं करता है। वो कहता है अब मैं तुम्हें नहीं स्वीकार कर सकता हूँ क्योंकि मैं हार चुका हूँ, भीष्म ने मुझे हरा के तुम्हें मेरे से लेके गया है, तो अब मैं क्या करूं। तो वो वापस आती है तो भीष्म से कहती है अब मैं क्या करूं। तो भीष्म से वो कहती है अब तुम मुझसे विवाह करो। वो कहता है मैं नहीं कर सकता। तो कहता है कि मैं जा रही हूं तपस्या करने और मैं बदला लूंगी। और वो बहुत तपस्या करती, फिर नदी बनती है और नदी के बाद में फिर श्रीखंडी बनती है और श्रीखंडी बन के फिर भीष्म का महाभारत का जो युद्ध है उसे तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, कोई मार नहीं सकता है। तो अर्जुन और श्री कृष्ण उसके पास आते हैं और कहते हैं क्या किया जाए आप ही बताओ। तो वो कहता है अपनी मृत्यु का कारण वो वही मार्ग वही बताता है कि श्रीखंड, हाँ कोई स्त्री यदि मेरे सामने आ जाए तो मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो श्रीखंडी जो होता है वो एक स्त्री का ही रूप है। तो अर्जुन जब युद्ध करने जाता है और भीष्म पितामह सामने होते हैं तो श्रीखंडी सामने आ जाता है, भीष्म अपने शस्त्र को डाल देता है, जिसको बाबा कहते हैं कन्याओं ने भीष्म पर क्या किए, वार किया। तो वो कन्या अर्थात श्रीखंडी। ओम शांति। कारण महाभारत का जो है भीष्म प्रतिज्ञा है, अगर भीष्म प्रतिज्ञा नहीं करता तो महाभारत होता ही नहीं। दूसरा कारण है महाभारत का कर्ण, उसमें अगर ये वरदान नहीं मांगते तो युद्ध ही नहीं होता है। तीसरा कारण द्रौपदी, उसने यदि निंदा नहीं की होती तो ये हुआ ही नहीं होता। एक एक व्यक्ति एक एक कारण है महाभारत के युद्ध का।